ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम बाबा ने जो हम बच्चों को रूहानी शक्तियां दी हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बाबा कहते हैं कि संगम युग में आप बच्चों को मुझ रूहानी पिता से वर्षा मिलता है, तो बाबा से हमें वर्षे में सतयुग में तो स्थूल संपत्ति मिलेगी, लेकिन संगम युग की जो संपत्ति है वो है ज्ञान, गुण और शक्तियां। बाबा की जो रोज की मुरली है उससे हमें ज्ञान मिलता है, और मुरली में ही गुणों की भी बातें होती हैं, शक्तियों की भी बातें होती हैं। गुण और शक्तियों का आधार भी ईश्वरीय ज्ञान ही है, लेकिन गुण हम किसे कहेंगे और शक्ति हम किसे कहेंगे, ये भी एक विचारणीय चिंतनीय प्रश्न है। जैसे गुण को हम मनुष्य का श्रृंगार कहते हैं, दैवी गुण मनुष्य का श्रृंगार है। हर्षित मुखता एक गुण है, वो हमारा गहना है, गुणों को हम गहना भी कहते हैं। नम्रता भी हमारा गहना है, अंतर्मुखता भी हमारा गहना है, पवित्रता भी हमारा गहना है। तो जैसे गहने मनुष्य को सुंदर बना देते हैं, ऐसे ये गुण भी मनुष्य की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। तो फिर हम शक्ति किसको कहते हैं? ये गुण हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन ये गुण टिके रहे, ये गुण नष्ट ना हो, परिस्थितियां इन गुणों को छीन ना ले, इन गुणों को बचाए रखने की जो ताकत है उनको हम शक्ति कहते हैं। तो गुण ही शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे गुलाब के पौधे पर फूल लगता है और फूल से ही गुलाब के पौधे की सुंदरता है, लेकिन गुलाब के पौधे में वो ताकत नहीं है कि वो 12 महीने अपने पर फूल लगाए रखे, क्योंकि वो प्रकृति के भी अधीन है और मनुष्यों के भी अधीन है। किसी ने फूल तोड़ लिया, प्रकृति ने फूल को आंधी तूफान के द्वारा नष्ट कर दिया, तो वो उसका गहना तो है, लेकिन उस गहने को बचाए रखने की ताकत फूल में नहीं है। इसलिए कुछ समय के लिए वो सुंदर लगता है, उसके बाद जब फूल नहीं होते तो इतना सुंदर नहीं लगता। हमें भी बाबा ने गुण दिए हैं, तो उन गुणों को हम हमेशा बनाए रखें, इसके लिए हमें शक्तियां चाहिए। शक्तियां बहुत सारी हैं, लेकिन किस शक्ति का किस समय प्रयोग करना है ये भी बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए। बाबा की जो कोर्स की किताब है उसमें हम 8 शक्तियों के नाम पढ़ते हैं, आप सबको याद होंगे, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये 8 शक्तियां हैं। लेकिन बाबा को हम कहते हैं सर्वशक्तिवान, तो सर्वशक्तिवान के पास कितनी प्रकार की शक्तियां हैं, उस सब के हम उत्तराधिकारी हैं जो हमारे बाबा के पास हैं। तो बच्चा होने के नाते हमारा उन पे हक है, तो बाबा के पास केवल ये 8 शक्तियां थोड़ी हैं, ये तो केवल समझाने के लिए थोड़ी मात्रा में दिखाई है, लेकिन शक्तियां तो बहुत सारी हैं जो हम रोज सुबह से शाम तक देखते हैं, यूज करते हैं। आप नाम गिनती करने लगे तो सैकड़ों निकल आएंगी। जैसे किसी बात को याद करना भी एक शक्ति है और बात को भूल जाना भी एक शक्ति है। किसी रुकी हुई चीज को चला देना भी एक शक्ति है और किसी चलती हुई चीज को रोक देना, गति को धीमा कर देना, ब्रेक लगा देना, मोड़ देना, ये भी एक शक्ति है। किसी चीज को नष्ट कर देना भी एक शक्ति है और किसी नष्ट हुई चीज को पुनर्निर्माण कर देना भी एक शक्ति है। किसी को नजदीक ले आना, अपनापन देके अपना बनाना भी एक शक्ति है और किसी को दूर कर देना दिल से, किसी बात को समा लेना भी एक शक्ति है और किसी बात को फैला देना भी एक शक्ति है, किसी बात को छोटा कर देना भी एक शक्ति है और बड़ा चढ़ा करके बहुत बड़ा कर देना वो भी एक शक्ति है, किसी का परिवर्तन कर देना भी एक शक्ति है, रूपांतरण कर देना ये भी एक शक्ति है, किसी को बहुत ऊंचा चढ़ा देना भी शक्ति है और किसी को नीचे गिरा देना भी एक शक्ति है। तो बहुत सारी शक्तियां हैं, अगर हम नाम गिनती करेंगे तो सैकड़ों प्रकार के नाम आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम किस समय किस शक्ति का प्रयोग करें और कैसे हम शक्तिशाली बने। शक्तियां हमारे अंदर है, हमारे संकल्पों में है, हमारे विचारों में है। अगर हम उस प्रकार के विचार निरंतर चलाते हैं तो वो शक्ति कर्म में आ जाती है। कहते हैं ना, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है, यद ध्यायति तद भवति। अब हम अंदर में मित्रता की बात सोचते हैं तो हमारे सामने जो भी आएगा उसको मित्र बना लेंगे, और अगर हम अंदर शत्रुता की बातें सोचते हैं तो जो सामने आएगा उसे शत्रु बना लेंगे। तो शक्तियां जीवन में उस शक्ति का चिंतन करने से आती हैं। अब समाना एक शक्ति है, अगर हम समाने की बातों का चिंतन करेंगे तो हमारे में वो शक्ति आ जाएगी, और अगर हम फैलाने का चिंतन करेंगे तो समाने की शक्ति नहीं आएगी, फैलाने की शक्ति आएगी। इसलिए अंदर हम जैसा चिंतन करेंगे वैसे ही हम बनेंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक लोग तो वो हैं जो इस बाहरी जगत में इंद्रियों के जो पदार्थ हैं, देखने के, सुनने के, सूंघने के, खाने के और स्पर्श करने के, उन इंद्रियों के पदार्थों को देख देख करके उनपे आकर्षित होते रहते हैं। और उनके मन में ये ख्याल आता है कि हम कितना खा लें, कितना देख लें, कितना भोग लें, तो वो बाहर की चीजों को अपनी इंद्रियों से स्पर्श करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बाहर की चीजों को भीतर भरना चाहते हैं। और दूसरी तरह के लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि बाह्य जगत में जो भी कुछ है वो मनुष्य के भीतर से ही तो निकला है, मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ है, तो मेरे भीतर भी तो बहुत कुछ है ना, मैं क्यों ना अपने भीतर वाली शक्तियों को बाहर निकालूं। तो वो व्यक्ति भीतर में जो कुछ है उससे बाहरी जगत को देना चाहता है, और पहली प्रकार के लोग वो हैं जो बाहरी जगत में जो भी कुछ है उसे भोगना और लेना चाहते। अब बाहरी जगत तो अस्थिर है, पल पल परिवर्तनशील है। आज कोई चीज दिख गई, कल वो नष्ट हो गई, आज कोई चीज ने सुख दिया, कल वो मिली ही नहीं। तो उस आदमी की स्थिति भी उन पदार्थों की तरह हिलती रहती है। चीज मिल गई तो खुश हो गया, नहीं मिली तो दुखी हो गया। लेकिन जो अपनी अंदर की शक्तियों को बाह्य जगत के कल्याण में लगाना चाहता है ना, वो स्थिर रहता है, क्योंकि अंदर की शक्तियां तो उसकी अपनी दौलत है। वो तो ऐसा नहीं है कि आज शक्ति अंदर है और कल नहीं है, इसलिए हम अपनी शक्तियों को अपने विघ्न और दूसरों के विघ्न हटाने में काम में लगाएं तो हम बेस्ट क्वालिटी वाले बनेंगे। अब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को समय पर यूज करें, उसका तरीका क्या है? थोड़े दिन पहले हमने एक समाचार सुना। समाचार ये था कि अखबार में आई थी खबर, वो एयर होस्टेस थी, विमान परिचारिका जिसको कहते हैं, तो वो कहीं होगी कोई पार्टी, उसमें चली गई और रात को 12 बजे घर लौटी। तो जब घर लौटी तो बाप ने डांट लगा दी, तो उस समय तो वो सो गई। उसके बाद जब सुबह उठी तो नाश्ते पे फिर बैठे थे घर के लोग, बाप भी बैठा था, भाई भी बैठा था, और भाई के साथ गई थी पार्टी में, अकेली तो नहीं गई थी। तो नाश्ते पे बाप ने फिर दोबारा बात शुरू कर दी कि भाई तुम क्यों गई थी, देर को रात में लौटी, मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसे ऐसे। तो उस लड़की ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, ये समाचार आया था। अभी देखिए, शक्ति तो मनुष्य में है, क्योंकि मरने के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना, फांसी लगाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना, ऐसे तो नहीं लग जाती। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिल जाता है, तो क्या होता है, वो पानी पीने लायक नहीं रहता, गंदला हो जाता है, जहर बन जाता है। तो शक्ति तो अंदर में है, लेकिन जब बाह्य जगत की नेगेटिविटी उसमें मिल जाती है तो वो शक्ति नकारात्मक शक्ति बन जाती है। किसी ने हमें सावधानी दी और हमने उसको सुन लिया, सुनना भी एक शक्ति है, मान लिया, मानना भी एक शक्ति है, अपना परिवर्तन कर लिया, अपना परिवर्तन कर लेना भी एक शक्ति है, कहने वाले के प्रति कृतज्ञता दिखाई, ये भी एक शक्ति है। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर बड़ों ने सावधानी दी तो हम सुनते, मानते, अपना परिवर्तन करते और कहने वाले का एहसान भी मानते। लेकिन शक्ति का नकारात्मक रूप क्या बन गया, मुझे टोका जाता है, दबाया जाता है, मेरी स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, मेरे पे शंका की जाती है, मैं ठीक हूं फिर भी मुझे गलत कहा जाता है, रोक टोक की जाती है, मेरे पे विश्वास नहीं किया जाता, बार बार एक ही बात दोहराई जाती है। उस शक्ति में जो उसमें थी, उसमें ये नकारात्मक थिंकिंग प्रवेश हो गई, तो उसने अपने को बदलने के बजाय अपने को मार लेने का मार्ग अपनाया। हालांकि बदल लेने में कम ताकत लगती, तो यहां कौन सी शक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन किया क्या? इसी तरह से मान लीजिए मेरे किसी कर्म को देख करके किसी के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जैसे हमने ये घटना सुनी, तो इसमें उस बहन के परिवार वालों के व्यर्थ संकल्प चले। अब कई बार हम ठीक होते हैं लेकिन किसी के संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि किसी दूसरे के संकल्प न चले, लोक संग्रह अर्थ, आप ठीक और ठीक होते हुए भी आप अपने को बदल लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दब्बू बन गई, इसका मतलब ये है कि आप भगवान की एक्स्ट्रा दुआओं के पात्र बन गए। अब ये मुझे डिसाइड करना है कि मेरे कारण 3-4 लोगों के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मेरे किसी कर्म के कारण, वो कर्म गलत नहीं है पर उनके संकल्प चलते हैं, अब मुझे कौन सी शक्ति प्रयोग करनी है, जिद वाली कि मैं तो करूंगी, तुम्हारे संकल्प चलते हैं तो मैं क्या करूं, तुम अपने मन को रोको, मुझे तो जो करना है करूंगी क्योंकि मैं गलत थोड़े ही हूं। अब एक तो ये भावना है, दूसरी ये भावना है कि भाई ये अपने को नहीं बदल पा रही हैं, इनका अपने मन पे वश नहीं है, ये फालतू सोच सोच के परेशान हो रही हैं, और अगर मैं इस कर्म को करना छोड़ भी दूं तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो एक ये शक्ति भी है कि मैं अपने आप को बदल लूं, मैं अपने मार्ग को थोड़ा सा परिवर्तन कर लूं ताकि उन 4-10 लोगों के संकल्प ना चले। तो ये मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन सी शक्ति का प्रयोग करूं। एक शक्ति का प्रयोग करूंगी तो दुआएं मिलेंगी, और विपरीत शक्ति का प्रयोग करूंगी तो मैं भी जिद्दी होंगी और आपस में जो जिद्द है वो बढ़ेगी, मेरा भी उनका मुंह देख के मेरे व्यर्थ ख्यालात चलेंगे, मेरा मुंह देख के उनके व्यर्थ ख्यालात चलेंगे। ना हम भगवान की दुआओं के पात्र बने ना वो भगवान की दुआओं, क्योंकि दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए। तो शक्ति हमें इस तरह से प्रयोग करनी है कि ईश्वरीय कार्य में हम मददगार बने। बाबा के कार्य में हम आगे बढ़े तब हम कहेंगे हमने शक्ति का सदुपयोग किया। किसी से कोई गलती हो गई तो बाबा जैसे कहती हैं, बाप समान बनाना और बाप समान समाना, ये भी दो शक्तियां हैं। किसी से कोई गलती हो गई, अब मुझे क्या करना है? अगर मैं सोचती हूं जाने दो ये गलती करता है, मेरा क्या जाता है, एक तो ये भावना है, एक ये भावना है कि नहीं ये भी तो बाबा का बच्चा है और अगर ये संपूर्ण नहीं बनेगा तो भी बाबा का कार्य तो पूरा नहीं होगा। हम इतनी सेवा करते हैं, लोग ज्ञान में चलें, बाबा के बच्चे बने ताकि जल्दी जल्दी बाबा का कार्य पूरा हो, तो हम औरों को तो बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये जो मेरा साथी है ये ना बने तो भी मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, जाने दो मेरा क्या जाता है। तो ये भी एक तरह से बाबा के कार्य में हम सहयोगी तो नहीं हुए ना, तो ये भी बाप समान बने, पड़ा ना रहे पर बाप समान बने, ये मेरी शुभ भावना। और फिर बाप समान समाना, क्योंकि जब हम किसी की बात को समा लेते हैं तो देखते हैं कि उस व्यक्ति में बदलने की ताकत आ जाती है, और जब हम किसी की बात को फैला देते हैं तो उस व्यक्ति में भी वो शक्ति नहीं रहती है, अपने को बदलने की शक्ति नहीं रहती है। तो मुझे किस शक्ति का प्रयोग करना है, किसी आत्मा के भाव स्वभाव के साथ टक्कर है तो मैं कौन सी शक्ति का प्रयोग करूं, शुभ भावना की शक्ति का, समाने की शक्ति का, तब तो बात सुधरेगी, और ऑपोजिट शक्ति को लगाया तो बात बढ़ेगी। इसी तरह से जैसे हम देखते हैं बाबा कहते हैं किसी के गुण को देखना, किसी के गुण को बढ़ावा देना, ये भी एक शक्ति है, और किसी के अवगुणों को देखना और अवगुणों को बढ़ावा देना, ये भी एक नेगेटिव शक्ति है। जैसे हम गुलाब के फूल को देखते हैं, गुलाब के फूल में कांटे तो एक डाली पे 10 हैं और फूल केवल एक है, कांटे 12 महीने रहते हैं और फूल केवल सीजन में ही आता है, कांटों को उखाड़ना बहुत मुश्किल है, फूल को तो झट तोड़ा जा सकता है। कांटों को अगर हम अवगुण कहें तो फूल को हम गुण कहेंगे। तो गुलाब के फूल में यूं तो अवगुण ज्यादा हुए क्योंकि कांटे ज्यादा हैं और 12 महीने मौजूद रहते हैं, और फूल तो एक दो ही हैं और वो भी सीजन में आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी नजर किस पे रहती है? फूल पे रहती है ना, अच्छी वाली चीज पे रहती है ना, भले वो थोड़ी है। तो इसी तरह से किसी मनुष्य में भी कांटे बहुत हैं, अवगुण बहुत हैं, और फूल की तरह गुण तो एक ही है। तो फिर हमें अगर उससे अपना काम निकालना है तो क्या करना पड़े? जैसे हम गुलाब के कांटों से कभी नहीं झगड़ते कि तुम 12-15 यहां क्यों खड़े हो, तुम भागो, मुझे फूल तोड़ना है, पड़े रहे वो, हम अपना काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हमको अपना काम निकालना है तो जिस आदमी में एक ही गुण है अपन उसको देखें, उसको यूज करें, काम निकाल लें। बाकी अगर उसमें कांटे हैं तो पड़े रहे, हम क्यों छेड़े, हमारा काम तो निकल रहा है ना। तो गुण देखना, गुण को यूज करना, गुण को बढ़ावा देना, और उस एक गुण को बढ़ा करके बाकी अवगुणों को भी गुण में बदल देना, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति। लेकिन हम इस शक्ति को यूज करें। ओम शांति। इसी तरह से किसी के अंदर कोई व्यर्थ भाव, भावना, विचार, अवगुण, व्यर्थ आदत, खराब आदत अगर हो तो उसको निकाल देना, ये भी एक शक्ति है। और उसकी समर्थ बातों को, समर्थ आदतों को रिस्पेक्ट देना, बनाए रखना, ये भी एक शक्ति है। जैसे हम नाखून काटते हैं तो उसके साथ उंगली तो नहीं काटते ना, सावधानी से काटते हैं, उतना ही काटते हैं भाई उंगली को ना तकलीफ हो। इसी तरह से कपड़े साफ करते हैं तो जो दाग लगा होता है उसको धोते हैं, पर चादर पे जो फूल बना होता है उसको तो नहीं उतारने की कोशिश करते ना, क्योंकि वो तो उसकी ओरिजिनल चीज है। तो अगर किसी ने गलती कर दी और हमें समझाना है तो हम कितना समझाएं, सावधानी देनी है, हम कितनी सावधानी दें, कितना इतना दें कि नाखून के साथ उंगली भी कटने लगे, इतनी बार समझाएं, इतनी बार बोलें, बार बार बोलें कि वो अपनी उंगली खींचने लगे, भाई तूने तो नाखून के साथ मेरी उंगली भी काटनी शुरू कर दी, छोड़ दे, भागने की कोशिश करे वो। क्योंकि जब हम बार बार हैमरिंग करेंगे तो क्या करेगा वो व्यक्ति, हमारे सामने नहीं आएगा, उसकी उंगली कट रही है। जब तक आप केवल नाखून काट रहे थे तो वो बैठा रहता, पर आपने तो उंगली भी काटनी शुरू कर दी, वो छुड़ा के भागेगा। फिर हम कहते हैं देखो मेरी बात सुन के ये मेरे सामने ही नहीं बैठता, मेरे सामने ही नहीं आता। भई आप उंगली काटनी शुरू कर देते हो इसलिए नहीं आता वो सामने, सिर्फ नाखून काटो। तो किसी को शिक्षा समझानी देना ये भी एक कला है। कहीं हम शिक्षा सावधानी देते देते अति में तो नहीं चले गए, कितना कहें ताकि वो बदल भी जाए और उसको फीलिंग भी ना आए, हीन भावना भी ना आए, और हमारे लिए उसका रिस्पेक्ट भी बना रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी कला कहिए, बहुत बड़ी शक्ति कहिए, बहुत सावधानी चाहिए इसमें। किसी भी चीज को तोड़ने में, खराब करने में, मिटाने में, फाड़ने में सेकंड लगता है, लेकिन किसी चीज को बनाने में बहुत समय लगता है। जैसे अपन पौधा बोते हैं, पांच साल में आम का पौधा तैयार हुआ। काटने में तो एक सेकंड लगता है। एक बच्चा 20 साल में नौजवान हुआ, मारने में तो सेकंड लगता है। एक दीवार 5 दिन में खड़ी हुई, उड़ाने में तो सेकंड लगता है। कपड़े को सिलाई करने में टाइम लगता है, फाड़ने में तो सेकंड लगता है। इसलिए निर्माण का जो कार्य है वो बड़ा है और विध्वंस का जो कार्य है वो छोटा है। तो निर्माण करना भी एक शक्ति है, विध्वंस करना भी एक शक्ति है, लेकिन हमको निर्माण किसका करना है और विध्वंस किसका करना है? अगर विध्वंस करने में सेकंड लगता है तो ये शक्ति तो बुराइयों के विध्वंस में लगनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्यार भरे रिश्तों का भी विध्वंस कर देते हैं, जाओ मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नजदीकी व्यक्ति को, अपने व्यक्ति को भी हम दूर कर देते हैं। कहीं हम प्यार को, रिश्तों को, विश्वास का विध्वंस तो नहीं कर देते, गलत प्रयोग तो नहीं कर लेते। विध्वंस करना है सेकंड में, लेकिन उन चीजों का जो हमारे किसी काम की नहीं है, और निर्माण करना उन चीजों का जो हमें इस जन्म के बाद भी आगे चाहिए, प्रेम का, शांति का, गुणों का, संबंधों का, विश्वास का, अपनेपन का, उसमें समय लगता है। धीरे धीरे निर्मित होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में काम सिद्ध करना चाहते हैं तो उल्टी शक्ति यूज हो जाती है। जैसे बच्चा कहना नहीं मानता है तो क्या करते हैं, उसे समझाने में तो टाइम लगे, समझाना भी एक शक्ति है, समझाने की शक्ति, और हाथ वाला काम करने में तो एक सेकंड लगती है, तो हमको लगता है जल्दी काम हो जाए, लेकिन उसका परिणाम गलत निकलता है। इसलिए कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धैर्य की शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि भाई मैं कितना सहन करूं, सहन करना भी एक शक्ति है ना, सहन शक्ति है, उसका नाम ही सहन शक्ति। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि भाई मैं कितना सहन करूं, आखिर भी सहन करने कोई सीमा तो होनी चाहिए, हम ऐसा कह देते हैं। लेकिन ये बात किस बात को दर्शाती है? जैसे मान लो एक गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी को सुबह घर के लोगों ने कहा कि भाई एक रिश्तेदारी में जाना है और वहां कम से कम भी 1,000 रुपए का खर्चा है, तो सुनेगा उसे शौक आएगा, कहां से लाऊं 1,000 रुपया, पर चलो कोई बात नहीं है, जैसे तैसे करूंगा। दोपहर में किसी ने कहा कि भाई आपके बच्चे के स्कूल में एक पार्टी है और आपके बच्चे को भी 500 रुपया चाहिए, तो उसे फिर शौक लगेगा, चलो मैनेज किया। शाम को उसने कहा, किसी ने उसको कहा कि भाई अमुक व्यक्ति बीमार है रिश्तेदारी में और सब मदद करेंगे, तो तुम भी उसको 2,000 रुपए की मदद करो, तो उस समय उसके मुख से निकलेगा आखिर मैं कितना करूं, क्या क्या करूं। क्यों? क्योंकि धन की शक्ति उसके पास बहुत कम है। एक काम को किया, दूसरे को किया, तीसरा करते समय तो उसे लगा कि बिल्कुल खाली हो गया मैं, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए उसके मुंह से क्या निकलेगा, मैं कहां कहां करूं, क्या क्या करूं। लेकिन इसी की जगह एक अमीर आदमी होता, उसको कोई कहता भाई तुमको 5,000 रुपया वहां देना है, 10,000 वहां देना है, 20,000 वहां देना है, तो फटाफट देता रहता, ना पूछता ना गिनती करता, शाम तक 10 जगह दे लेता, फिर भी कुछ नहीं कहता। तो जो सहन शक्ति में अमीर है उनके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि कितना सहन करूं, आखिर कोई सीमा तो होनी चाहिए। और जो सहन शक्ति में गरीब है, जरा सा स्ट्रोक है, एक बार सहन करते ही खत्म हो गया, तो दोबारा जब सहने की बारी आई तो मुंह से क्या निकलेगा, कितना सहन करूं, कोई तो सीमा होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक तो खाली हो गया। इसलिए ये जो शब्द निकलता है ये भी कमजोरी को सिद्ध करता है। तो हम इतना स्टॉक बना के रखें ना, इस कलयुग के अंतिम समय में सहन करने की कोई सीमा नहीं है। सीमा तो देशों की होती है, बॉर्डर होते हैं कंट्रीज के, ये तो वैल्यू है और वैल्यू तो अनलिमिटेड होता है। प्रेम की कोई सीमा है क्या, कितने लोगों से प्रेम करूं, कोई गिनती बताएगा क्या, केवल भारत के लोगों से प्रेम करो, केवल राजस्थान के लोगों से प्रेम करो। प्रेम अनलिमिटेड है, आपको 700 करोड़ आत्माओं से प्रेम करना है, जीव जंतु प्रकृति सबसे प्रेम करना अनलिमिटेड। तो सहन करने के लिए भी कोई बाउंड्री थोड़े है कि केवल घर वालों की सहन करो, इस जात वालों की सहन करो, सुबह सुबह सहन करो, शाम को सहन मत करो। अनलिमिटेड, जब तक जीना है तब तक सब कुछ सहन करना है, पता होते हुए जाने अनजाने सब कुछ सहन करना है, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है, वातावरण ही ऐसा है, कभी बीमारी आएगी, कभी प्रकृति आएगी, कभी परिस्थिति आएगी, कभी कुछ आएगा। इसलिए कोई भी गुण और कोई भी शक्ति को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, कब तक और कितना नहीं, जब तक जीना है तब तक सहना है। और वास्तव में वो सहना सहना लगता ही तब है जब हमारे पास सहन शक्ति का स्टॉक कम होता है। जब वो फुल स्टॉक है तो वो सहना सहना ही नहीं लगता, नेचुरल लगता है। जब हम किसी को राय देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, वो हमारी सलाह को मानता नहीं है, उसके अनुसार चलता नहीं है, तो कई बार हमको ऐसे लगता है कि इसने हमारी बात नहीं मानी, डिसरिगार्ड किया, इसके मन में हमारे लिए सम्मान नहीं है, ऐसे आता है। जैसे बाबा कहते हैं कि मालिक बन करके सलाह दो, और अगर सामने वाला ना माने तो फिर बालक बन जाओ। किसी को भी राय देना, इसकी भी एक विधि होती है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, हमारे हाथ में एक गांठ है और गांठ में बड़ा दर्द है, और ये पता है कि ऑपरेशन से गांठ निकालने पे ही इसको चैन आएगा। अब डॉक्टर ऐसे ही नहीं कि आप खड़े हुए और आपका हाथ पकड़ के फटाफट चाकू चला दे। गांठ निकालनी है, बिल्कुल ठीक बात है, निकल के ही चैन मिलेगा, ये भी ठीक बात है, लेकिन वो ऐसे नहीं करता कि फटाफट, आपको पता ही नहीं था, हाथ पकड़ा और चला दिया चाकू। इसका एक तरीका है, पहले बेहोश करेगा वो, बहुत मीठी मीठी बातें, प्यार भरी बातें सुना के आपको विश्वास मिलेगा, कुछ नहीं है, बस बहुत ही माइनर सा ऑपरेशन है, बस कुछ टाइम ही नहीं लगना है, 2 सेकंड की बात है, बस आप बाबा बाबा बोलो और बस हो गया, ऐसे ऐसे कर करा करके, और उसके बाद वो कहीं चाकू, क्योंकि ऐसे उसने अगर चाकू लगा दिया तो आप चिल्लाएंगे, उसको पता। तो किसी का हमको भी ऑपरेशन करना है, इसके हाथ में गांठ है और उसके अंदर कोई बुराई की गांठ है, हम चाहते हैं कि वो निकल जाए, तो हम क्या करते हैं, रास्ते चलते कहीं भी पकड़ के ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में, अनुकूल स्थान, प्रतिकूल स्थान, बोलने योग्य स्थान, ना बोलने योग्य स्थान, और शुरू कर देते हैं। तो वो तो चिल्लाएगा ना बेचारा, कहेगा छोड़ो छोड़ो मुझे, ये कोई जगह थोड़े है, और आप कहते हो नहीं जी मैं तो आपका भलाई कर रहा हूं, आपको जरूरत है, मैंने, फिर आप कहते मैंने तो भला किया, देखो ये मेरी सुनता ही नहीं, ये कोई जगह थोड़ी है भला करने की, उसके लिए भी तो अनुकूल जगह हो, अनुकूल वातावरण हो, आप प्यार से कहो, शुभ भावना से कहो, कहीं एकांत में ले जा करके दिल का प्यार दे करके फिर उसे समझाओ, तो वो आपकी बात को मानेगा नहीं, तो वो चिल्लाएगा भी, आपका सामना भी करेगा और आपके लिए मन में कोई ना कोई गांठ भी रख लेगा। आप एक गांठ निकालने चले थे, एक गांठ और बना दी आपने। तो इस शक्ति का भी हम कैसे प्रयोग करें? शिक्षा देना, सावधानी देना, समझानी देना, उसको भी हम युक्ति से प्रयोग करेंगे तो वो लगेगी। सामना करना भी एक शक्ति है। जैसे कहते हैं भाई, क्रोध पर क्रोध करो पर क्रोधी पर क्रोध मत करो, पाप से घृणा करो पर पापी से घृणा मत करो, रोग से घृणा करो पर रोगी से घृणा मत करो, बुराई से घृणा करो पर बुरे आदमी से घृणा नहीं करो। तो हमको सामना किसका करना है? व्यक्ति का सामना करेंगे तो झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा, दुश्मनी हो जाएगी। व्यक्ति का सामना तो हमको करना ही नहीं। व्यक्ति तो अच्छा है ना, जैसे डॉक्टर होता है वो कभी रोगी को नहीं मारता। किसको मारता है? रोग को मारता है, ताकि रोगी अच्छा हो जाए। तो किसी व्यक्ति में कोई बात है, उसे हम खत्म करना चाहते हैं, तो हमें तो उस क्रोध पर या उस बुराई पर क्रोध करना है ना, व्यक्ति पर तो नहीं करना है ना। दोनों चीजें अलग अलग है। व्यक्ति तो अच्छा है, शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, लेकिन जो बुराई है वो खराब चीज है, तो हमें तो उस बुराई का सामना करना है, परिस्थिति का सामना करना है, लेकिन व्यक्ति का सामना नहीं करना है। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि अंग्रेजों से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, और वो जब भाषण करते थे तो अंग्रेजों के बहुत सारे गुणों की महिमा करते थे, जैसे स्वच्छता प्रिय हैं वो, पंक्चुअल हैं, रेगुलर हैं, उनमें देशभक्ति है, अपने देश से उन्हें बहुत प्रेम है, ऐसे ऐसे उनके गुणों की महिमा करते थे। तो लोग उनको कहते थे कि आप अंग्रेजों से भारत को कैसे आजाद कराएंगे, आप तो अंग्रेजों की महिमा करते हो। वो कहते थे मैं अंग्रेजों के जो गुण है उनकी महिमा करता हूँ, अंग्रेजों से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन उनकी जो गलत नीतियां हैं जो भारत के लोगों का अहित करती हैं, मैं उन नीतियों का विरोधी हूं। अगर वो अपनी उन गलत नीतियों को बदल दें तो मेरी उनसे कोई शत्रुता नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए, लेकिन मित्रों की तरह से, शत्रुओं की तरह से नहीं। वो भारत से जब जाएं तो मित्रों की तरह से यहां से जाएं। तो उन नीतियों से विरोध है, इसलिए उन्होंने हमेशा नीतियों का विरोध किया। तो हम भी किसी भी मनुष्य के विरोधी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम उन विकारों के, उन बुराइयों के विरोधी हैं जिनके कारण वो खुद भी दुखी हैं और दूसरों को भी दुख देता है। इसलिए किसी मनुष्य से हमें नफरत नहीं है। तो उसकी उस बुराई को हम कैसे मारेंगे? जैसे डॉक्टर दवाई देता है जिससे आदमी की केवल कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, आदमी को नुकसान नहीं पहुंचता। तो ऐसे ही हमारी जो शुभ भावनाएं हैं वो दूसरे व्यक्ति की कमी को तो नष्ट कर देती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को फायदा ही पहुंचाती है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो किसी भी कमी कमजोरी को खत्म करने का, भाव स्वभाव की टक्कर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है शुभ भावना की शक्ति का प्रयोग करना। इसी तरह से क्षमा करना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो वो बदल जाता है, और अगर हम बदला लेते हैं तो वो और ज्यादा बिगड़ जाता है। बाबा के समय की हम बहुत बातें सुनते हैं, हमारी बड़ी दादियों के समय की बातें सुनते हैं कि किसी आत्मा ने बहुत विरोध किया, लेकिन बाबा ने उसकी कोई बात चित्त पर नहीं रखी। और जब वो बाबा से मिलने आया तो बाबा ने उसे बहुत प्रेम दिया, बाबा तो थे ही प्रेम के सागर। तो बाबा के प्रेम को देख करके उस व्यक्ति को बड़ी आत्मग्लानी हुई, आत्मग्लानी की अग्नि में वो जला, पश्चाताप की अग्नि में जला कि मैंने बाबा से कैसा व्यवहार किया और देखो बाबा ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। अगर बाबा मुझे एक बार भी थोड़ा भी डांट देते तो मुझे तसल्ली मिल जाती, लेकिन बाबा ने तो प्यार ही प्यार किया। तो उसने जो गलत किया जाने अनजाने, वो उसका मन खाता है, और अगर एक बार भी उसे डांट दिया जाता तो उसको आत्मग्लानी होती ही नहीं। आत्मग्लानी कब हुई? जब उसे केवल प्यार ही प्यार दिया गया। तो अगर हम चाहते हैं कि अगला व्यक्ति अपनी गलती को आपे रियलाइज करे, हम रियलाइज करवाएंगे तो वो हमारा दुश्मन बनेगा, और अगर हम उसे खुद रियलाइज करने का मौका देंगे तो वो हमारा मित्र बनेगा। इसी तरह से भूलना भी एक शक्ति है, याद करना भी एक शक्ति है, लेकिन कई बार हम उलट देते हैं। जिन बातों को याद करना चाहिए उनको भूल जाते हैं, जिनको भूलना चाहिए उनको याद करते हैं। एक नेचुरल सिस्टम है कि हम पिछले जन्म की बातों को भूल जाते हैं, लेकिन कैसे भूलते हैं? देखो कैसे भूलते हैं, शरीर छूट गया तो शरीर से जुड़ी हुई बातें आत्मा को इतनी याद नहीं आएंगी। शरीर दिखता है तो याद आती, और उसके बाद अगले जन्म में अगले शरीर में प्रवेश किया तो भी लंबे समय तक इंद्रियों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जब आत्मा गर्भ में है तो बाह्य जगत से उसका कोई संबंध नहीं है, और वो एक तरह से अंडरग्राउंड है, अंतर्मुखी है। तो इतने लंबे पीरियड में जब उन बातों का स्मरण नहीं किया, बातें याद कब आती हैं? जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो हर रोज पाठ को रिपीट करता है, कई कई बार रिपीट करता है, वो पाठ पक्का हो जाता है। जिन बातों को हम मन में बार बार दोहराते हैं वो बातें हमें भूलती नहीं। अब पिछले जन्म की बातें क्यों भूल गई? क्योंकि वो बातें दोहराई नहीं गई। शरीर छूट गया, उसके बाद नए शरीर में प्रवेश हो गए तो वो दोहराई नहीं गई, इसलिए वो फिनिश हो गई। अगर हम इस जन्म की भी बहुत सारी बातों को दोहराए नहीं तो वो भी फिनिश हो जाएंगी, भूल जाएंगी। वो बार बार क्यों याद आती हैं? क्योंकि हम उन्हें बहुत दोहरा दोहरा के पक्का कर लेते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं जी ये बातें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, एक तरफ हम ऐसा कहते हैं, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा दोहराई हम उन्हीं बातों की करते हैं। तो जब आप उन्हें बार बार दोहराएंगे मन में भी और दूसरों के सामने भी, तो वो और पक्की होंगी, और ज्यादा याद आएंगी। तो भूलने का तरीका ये है कि जो हमें पसंद नहीं, जो हम नहीं चाहते, उसे हम एक बार भी मन में ना लाएं, आए मन में फुल स्टॉप लगाएं। इसलिए बाबा कहते हैं पास्ट को भूल जाओ, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ। और जो व्यक्ति बीती को भूलना जानता है वही आगे बढ़ता है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, अब उन्होंने पांचवी क्लास में जो किताबें पढ़ी, पढ़ते पढ़ते अपनी किताबों से प्रेम तो हो ही जाता है, लेकिन जैसे ही छठी क्लास में जाएंगे तो पांचवी वाली सारी किताबों को भूल जाएंगे, उठा के भी नहीं देखेंगे, किसी को पकड़ा देंगे, उन्हें पता है। इनको छोड़ेंगे तभी हम अगली क्लास में जाएंगे। अगर इनके प्रेम में ही चिपटे रहे तो छठी क्लास तो पढ़ नहीं सकेंगे। अगला दर्जा पढ़ना है तो पिछले दर्जे की बातों को भूलना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं हम अगली क्लास में जाएं, तो अगली क्लास में तो तब जाएंगे ना, जो आज तक सुना पढ़ा देखा, जो काम का नहीं था उसको छोड़ दिया, बाकी नया सीखेंगे, नई बातें सीखेंगे। नहीं तो पुराना ही मन में पड़ा रहेगा, नया सीखने के लिए नया मन कहाँ से लाएंगे? मन तो एक ही है ना, उसे चाहे पुरानी बातों में लगा लो और चाहे नई बातें सीखने में लगा लो। इसलिए जो वर्तमान में हमारे सामने है हमें अपना मन उसमें लगाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, मन को परिवर्तन करना, पास्ट से हटाकर, व्यर्थ से हटाकर, बीते हुए से हटाकर वर्तमान में लगाना, काम की बात में लगाना, सार्थक बात में लगाना, लगाना भी और हटाना भी। जैसे कहते हैं लिखना भी एक शक्ति है और मिटाना भी एक शक्ति है। बोर्ड पे हम कोई अक्षर लिखते हैं तो साथ में हम डस्टर भी रखते हैं, उसे मिटा भी देते हैं। लेकिन कई बार मनुष्य यहां बातें लिख तो लेता है लेकिन इसको मिटाने के लिए डस्टर साथ में नहीं रखता है, वो लिखी पड़ी रहती है। लेकिन लिखने में हम जितने माहिर हैं, हमें मिटाने में भी उतना ही माहिर बनना पड़ेगा। तब तो ये खाली रहेगा ना, नहीं तो ये भरा रहेगा, फिर क्या करेंगे। तो ये बहुत सारी बाबा ने हम बच्चों को शक्तियां दी हैं, इन सब शक्तियों को हम बहुत समझ सोच विचार के साथ यूज करेंगे तो बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। ओम शांति।